हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सिद्धार्थ की मुट्ठियां फिर से भींच गईं। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर झलक है कहाँ और वो बन क्या चुकी है? और ये सवाल अब उसके अहंकार को भीतर से जलाने लगा था। वहीं दूसरी ओर कुछ ही देर में झलक सीधे अपने ऑफिस के टेरेस पर लैंड हुई। जैसे ही वो उतरी, बिना आदित्य की एक भी बात सुने तेज कदमों से अंदर चली गई और सीधे अपने केबिन में पहुंच गई। उधर शालिनी ने जैसे ही झलक को उस तरह टेरेस से आते देखा, वो चौंक गई। मिस झलक कहां से आ रही हैं और इतनी जल्दी में क्यों हैं? लेकिन अगले ही पल जब उसने आदित्य को झलक के पीछे पीछे लगभग भागते हुए अंदर आते देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। लगता है आदित्य राणा अब मेरी पहुंच से बाहर हो चुका है। काश मुझे कोई रास्ता मिल जाता उसे अपना बनाने का। उधर आदित्य तेज कदमों से झलक के पीछे आया और आवाज दी, हेलो मिस मल्होत्रा, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। झलक बिना मुड़े ही रुक गई। आदित्य बोला, आप भले ही मुझसे सारी बातें क्यों न छुपा रही हो, लेकिन वहां आपके पास एक बिजनेसमैन खड़ा था जो आपको बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका आपसे कोई ना कोई रिश्ता हो। उसके बराबर में एक लड़की भी थी, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि वहां कुछ तो ठीक नहीं था। ये सुनकर झलक हल्का सा चौंक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि आदित्य ने वहां उसके अलावा किसी और को गौर से नहीं देखा, वरना उसे पता चल जाता कि उस बिजनेसमैन के बराबर खड़ी लड़की आकांक्षा थी, जो उसकी हमशक्ल थी। ये सोचकर झलक ने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। चलो कम से कम उसने आकांक्षा को नहीं देखा, वरना ना जाने कितने सवाल पूछता। और इस वक्त मेरे पास उसके किसी भी सवाल का जवाब देने का धैर्य नहीं है। तुरंत ही उसने सख्त स्वर में कहा, देखिए मिस्टर राणा, मुझे लगता है आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। वहां कौन खड़ा था, कौन मुझे कैसे देख रहा था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो मेरा मकसद है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कामयाबी चाहिए। आदित्य थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं मिस मल्होत्रा, शायद आप भूल रही हैं कि इस वक्त आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ हैं। आपसे ज्यादा कामयाब मुझे नहीं लगता कि कोई और महिला हो सकती है, आप पहले ही बहुत सफल हैं। झलक ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कामयाबी, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, आपको ये कामयाबी लगती है मिस्टर राणा? नहीं, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब होगी जब हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट बोर्ड से अप्रूव होगा, जब पूरे देश दुनिया में हमारा नाम होगा और साथ ही बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें मिलेगा। उस वक्त मिलेगी मुझे असली कामयाबी। उसके स्वर में अटूट विश्वास था। आदित्य सचमुच चौंक गया। वो हमेशा से स्मार्ट तरीके से अपना बिजनेस संभालता आया था, उसे दिखावे का शौक नहीं था। उसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही खुद को सबसे ऊपर साबित करने की कोशिश की। इतना सफल होने के बावजूद उसने कभी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की रेस में हिस्सा तक नहीं लिया। लेकिन आज झलक की आंखों में जलती महत्वाकांक्षा देखकर वो अचरज में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आता मिस मल्होत्रा, उसने शांत स्वर में कहा, अगर आप इतनी कामयाब हैं तो दुनिया को क्या साबित करना है, और मेरी नजर में तो आप पूरी तरह सफल हैं। झलक तिरछी मुस्कुराई। आपकी नजरों में मैं कामयाब हो सकती हूं, उसने कहा, लेकिन अपनी नजरों में नहीं। जब तक मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाती जहां नीचे खड़े लोग मेरे बारे में एक शब्द कहने की हिम्मत भी ना कर सकें, जहां वे मेरी ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचें, तब तक मेरी कामयाबी अधूरी है। ये कहते कहते उसका स्वर हल्का कांप गया। उसके मन में पुरानी यादें कौंध गईं। वो समय जब पूरा समाज उसे कटघरे में खड़ा कर रहा था, सही गलत का फैसला उसके बिना कर रहा था, उसे नाजायज मनहूस नाम देकर पुकार रहा था। उसकी रगों में जैसे ठंडा लहू दौड़ गया। कुछ पल के लिए वो खो गई और सामने खड़ा आदित्य राणा बहुत ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ रहा था, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उस सुबह आदित्य को सचमुच ऐसा लगा था जैसे वो पहली बार झलक को समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे जानना चाहता हो कि आखिर इस लड़की ने अपने भीतर कितने दर्द, कितने गम छुपा रखे हैं। लेकिन झलक ने जल्दी ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया। वो सीधी खड़ी हुई, चेहरा सामान्य किया और बोली, मिस्टर राणा, आई थिंक आपको अब जाना चाहिए। और हाँ, साइट का काम भी चेक कर लीजिए। देखिए प्रोजेक्ट कल से कहाँ तक पहुंचा है। आदित्य थोड़ा सा चौंका, फिर संभल कर बोला, ठीक है, आप सही कह रही हैं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, आपका स्टाफ भी जा चुका होगा, आपको भी अब निकलना चाहिए, अगर आप ठीक समझें तो क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं? कुछ पल के लिए झलक चुप रही। उसने गहरी सांस ली, अपने केबिन की ओर देखा, सचमुच पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। धीरे धीरे सब जा चुके थे। वो अंदर गई, अपना लैपटॉप और जरूरी फाइलें समेटी, फिर बाहर आकर बोली, चलिए मिस्टर राणा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। आदित्य सच में हैरान था। उसे लगा था कि अगर वो ड्रॉप करने की बात करेगा तो झलक उसे दो बातें सुना देगी, शायद ये भी कह दे कि वो उस पर चांस मार रहा है। लेकिन यहां तो मामला उल्टा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की पल में कुछ और होती है और पल में कुछ और, आखिर उसका असली रूप कौन सा है? फिलहाल उसने मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की और सीधे मैंशन की ओर रवाना हो गया। उधर उसी वक्त अनामिका अपने कमरे में बेचैनी से कहल रही थी। सुबह जो कुछ हुआ था उसके बाद से उसका मूड अजीब सा हो गया था। वो झलक से मिल भी नहीं पाई थी और ऊपर से झलक पूरे दिन गायब थी। फोन पर फोन मिलाकर वो थक चुकी थी, लेकिन झलक ने ना कॉल उठाया, ना कोई मैसेज किया, ना ही एक छोटा सा रिप्लाई। ये बात अनामिका को भीतर तक खाए जा रही थी। कुछ सोचते हुए वो कमरे से बाहर आई और नौकर को आवाज दी, मेरे लिए ब्लैक कॉफी जल्दी से कमरे में लेकर आओ। लेकिन तभी स्नेहा जी ने उसकी आहट सुन ली। उन्होंने सोचा, आज ही इतनी चिड़चिड़ी क्यों है, हमेशा तो हंसती रहती है। स्नेहा जी खुद ही किचन में गई और अनामिका के लिए कॉफी बनाकर उसके कमरे में ले आई। इस समय अनामिका बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। उसे बेहद खालीपन महसूस हो रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे झलक पर आ रहा था। एक कॉल तक नहीं कर सकती थी। तभी स्नेहा जी ने उसके पास आकर कहा, लो बेटा तुम्हारी कॉफी। अनामिका मुड़ी और चौंक कर बोली, अरे माँ, आप क्यों लेकर आई? मैंने तो नौकर से कहा था, आपको क्या जरूरत थी खुद करने की? ऊपर से आप पूरा किचन भी संभाल रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। स्नेहा जी मुस्कुराई, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अपने हाथों से तुम लोगों को खाना बनाकर खिलाने में मुझे अलग ही खुशी मिलती है। जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है ना, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और फिर अगर मैं घर के छोटे मोटे काम भी ना करूं तो दिन कैसे कटेगा? अनामिका ने हंसते हुए कहा, तो फिर आप परेशान क्यों होती हैं? पार्टी कीजिए, मैं आपको किटी पार्टी ज्वाइन करवा देती हूँ, वहां रोज की पार्टी, गपशप, मस्ती सब मिलेगा। यह एक काम करते हैं, कल से मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगी, पूरा शहर घुमाऊंगी। जब से आप यहां आई हैं कहीं बाहर जाना ही नहीं हुआ, मैं भी थोड़ी बिजी थी लेकिन अब फ्री हूं। ये सुनकर स्नेहा जी ने तुरंत हाथ हिलाया, अरे नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, गांव में भी इतना घूम लिया है कि अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता, मुझे तो बस घर में अपने बच्चों के साथ ही सुकून मिलता है। उन्होंने प्यार से अनामिका के सिर पर हाथ फेरा और अनामिका कॉफी का कप हाथ में लिए बालकनी से बाहर अंधेरे में झांकती रही। लेकिन उसके मन में अब भी सिर्फ एक ही सवाल था,
झलक आखिर है कहाँ? स्नेहा जी ने नरमी से पूछा। फिलहाल बेटा एक बात बताओ, तुम इतनी नाराज क्यों लग रही हो आज? मैंने देखा तुमने नौकर को भी आज थोड़ी तेज आवाज में कॉफी लाने को कहा। अनामिका ने गहरी सांस ली, फिर झुंझलाते हुए बोली, माँ मेरा मूड बहुत खराब है, झलक पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, उसके बिना मेरा दिल ही नहीं लगता, मैंने उसे कितने सारे कॉल्स और मैसेज किए लेकिन उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। ऐसा वो कभी नहीं करती, तो फिर आज ऐसा क्या है? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। स्नेहा जी के चेहरे पर भी चिंता उतर आई। कहीं वो बहुत बिजी तो नहीं है, कोई प्रोफेशनल मीटिंग वगैरह? फिर अचानक उनकी आवाज में माँ वाली घबराहट आ गई। वो ठीक तो है ना? अनामिका तुरंत बोली, अरे माँ, वो बिल्कुल ठीक होगी, उसे भला कौन क्या कह सकता है। आप तो जानती हैं वो सुपरवुमन है, बस काम में ही डूबी होगी। उसने तो काम को ही अपनी दुनिया बना लिया है। ये सुनकर स्नेहा जी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब शुरू शुरू में उसने आर्यन को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में मुझसे मिलवाया था ना, तब मुझे लगा था मेरी बेटी को सच में कोई मिल गया है जो उसका साथ देगा। लेकिन जिस तरह उस लड़के ने मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया, वो मेरी नज़रों से पूरी तरह गिर गया। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, अब तो मुझे लगता है शायद झलक की नज़रों में कोई मर्द काबिल ही नहीं बचा जो उसकी ज़िंदगी में आ सके। अनामिका चुप होकर सुनती रही। स्नेहा जी ने फिर धीरे से कहा, दादाजी ने जिस लड़के का नाम लिया था, क्या नाम था उसका? हाँ, आदित्य राणा जी। हमें तो वो ठीक लगे थे, हमें लगा था शायद झलक को धीरे धीरे पसंद आ जाएंगे, लेकिन झलक ने उन्हें भी साफ मना कर दिया, ऊपर से उनकी बेइज्जती भी कर दी। पता नहीं वो अब क्या सोचते होंगे। अनामिका हल्का सा मुस्कुराई। माँ, आप झलक को जानती हैं, वो किसी को अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानी से आने नहीं देती, और जहाँ तक आदित्य राणा की बात है, वो इतने कमज़ोर भी नहीं है कि थोड़ी सी बात से बुरा मान जाएं, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो झलक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्नेहा जी ने आश्चर्य से पूछा, सच? अनामिका ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ माँ, कभी कभी दो ज़िद्दी और मज़बूत लोगों को टकराने में ही वक्त लगता है, लेकिन अगर वे एक दूसरे को समझ लें तो फिर साथ भी मज़बूत होता है। स्नेहा जी ने गहरी सांस ली। बस मेरी यही दुआ है, उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कि मेरी बेटी को कोई ऐसा मिले जो उसकी ताकत से डरे नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा रहे। और उसी पल दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की हल्की सी आवाज़ आई। अनामिका और स्नेहा जी दोनों की नज़रें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गईं।